आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से अपनी सरकार पोर्टल की ई सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा सुचारू रूप से जारी। अब तक 30,50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए। राज्य सरकार ने आपदा के संबंध में भ्रामक और गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है और प्रदेश के अधिकांश जिलों में 18 जुलाई तक भारी बारिश व आकाशीय बिजली चमकने की चेतावनी। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से दी जा रही विभिन्न ई सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की है। श्री धामी ने आज देहरादून में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुनने के दौरान ये अपील की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित समाधान समय से करने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को तहसील दिवस और क्षेत्र पंचायत समिति की नियमित बैठकें करने को कहा। श्री धामी ने कहा कि जिलाधिकारी प्रत्येक कार्य दिवस में जन सुनवाई करें ताकि लोगों की अधिक से अधिक समस्याओं का निस्तारण हो सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। अब तक 30,50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए हैं। यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सर्वाधिक 10,47,000 से अधिक भक्तों ने केदारनाथ धाम और 8,58,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा की। वहीं उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 10,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उधर चमोली जिले में स्थित हेमकुट साहिब में 1,30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने मत्था टेका है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यात्रा मार्गों पर जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। ठहराव पड़ावों पर यात्रियों के लिए पानी, शौचालय, विश्राम, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही यात्रा मार्गों पर स्वच्छता अभियान लगातार चलाया जा रहा है ताकि तीर्थयात्री प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठा सकें। इसके अलावा बारिश और भूस्खलन होने की स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रूकवाया जा रहा है। नीति आयोग ने ई फास्ट इंडिया पहल के अंतर्गत नीति गियर शिफ्ट चैलेंज शुरू करने की घोषणा की है। इस हैकथॉन का उद्देश्य देश की आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करते हुए भारत में कार्बन उत्सर्जन सहित ट्रक वाहनों के संचालन के लिए नवीन व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना है। नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रकों के संचालन में वित्तीय, तकनीकी और परिचालन चुनौतियों का समाधान करने वाले नवीन व्यवसाय मॉडल विकसित करने के लिए छात्रों, परिवहन सेवाओं, सेवा पेशेवरों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को भी आमंत्रित किया है। कार्यक्रम में ई फास्ट इंडिया के जाने माने लोग, वित्तीय संस्थाओं और उद्योग मंच के प्रतिनिधि शामिल होंगे। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज का आयोजन IIM बेंगलोर, स्मार्ट फ्रंट सेंटर इंडिया, WRI इंडिया और अन्य संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है। नीति आयोग ने कहा कि हैकथॉन को 2 राउंड में होगा और गियर शिफ्ट चैलेंज भारत में टिकाऊ माल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने सूचना का अधिकार अधिनियम यानी RTI को सबसे प्रभावशाली कानून बताया है। उन्होंने कहा कि RTI का उद्देश्य पारदर्शिता, सुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि स्कूलों और कॉलेजों में RTI के संबंध में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि छात्र छात्राएं इसके महत्व को समझ सकें। सूचना आयुक्त भट्ट ने कहा कि समय समय पर जन जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन कराना जरूरी है जिससे आम जनता को पता चल सके कि RTI अधिनियम के तहत आम आदमी को व्यापक अधिकार दिए गए हैं।
महाविद्यालयों में बकायदा इसके लिए कार्यशालाएं आयोजित करके, जो क्योंकि वो आने वाली जनरेशन है, आज वो अधिकार के बारे में समझेंगी तो वो निश्चित तौर पर जो है कल कर्तव्यपरायणता से काम करेंगे। दायित्व बोध उनको होगा अधिकार जानने के साथ साथ। दूसरा, जो वर्तमान में लोक प्राधिकारी हैं उनमें कहीं लगता है थोड़ा प्रशिक्षण का अभाव है। कई बार जो सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधान हैं उनके अंतर्गत या तो सूचना नहीं दी जा पाती है या उनकी प्रॉपर सुनवाई नहीं होती है, तो उस पर थोड़ा सा कार्य करने की आवश्यकता है सकारात्मक पहलू के।
प्रदेश में आपदा को लेकर भ्रामक और गलत सूचनाएं प्रसारित करने वालों के खिलाफ सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील में कुलागढ़ में बादल फटने से पुल टूटने और बांध बनने की गलत और भ्रामक सूचना प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव ने सभी जिलों को आपदा से संबंधित भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने बताया कि आपदाओं को लेकर भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने वालों पर दोष सिद्ध होने की दशा में 1 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। बद्रीनाथ धाम के नवनियुक्त रावल अमरनाथ नम्बूदरी ने आज धार्मिक परंपराओं व पूजा अर्चना के बाद प्रभारी रावल का पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही सेवानिवृत्त रावल ईश्वर प्रसाद नम्बूदरी को मंदिर समिति ने सम्मान समारोह में विदाई दी। आज सुबह 8:30 बजे प्रभारी रावल ने पंचतीर्थ स्नान कर मंदिर के निकट पंचशिलाओं के दर्शन किए। इस अवसर पर श्री बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। बरसात के मौसम में विभिन्न रोगों का खतरा बढ़ गया है, खासकर डेंगू के मामले में सामने आने लगे हैं। इसको देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी सोनिका का कहना है कि बरसात के मौसम में डेंगू का सबसे अधिक खतरा रहता है, इससे बचाव के लिए जनता को जागरूक करना और उनकी सहयोग की आवश्यकता अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि समय समय पर गमलों और कूलर में जमा हुए पानी को साफ करते रहने से डेंगू का लार्वा नहीं पनपता है। इसके अलावा घर घर जाकर दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है।
बरसात का सीजन चालू हो गया है और जैसे ही धूप आती है फिर लार्वा पनपने लगता है, तो उसी के क्रम में हम लोग 3 तरीके से काम करते हैं। एक तो जो सोर्स रिडक्शन का काम है, घर घर जाके आशा हमारी जाती हैं और सोर्स रिडक्शन करती है। इसके अलावा लार्वासाइडल का छिड़काव हो गया और प्रचार प्रसार हो गया लोगों में जागरूकता फैलाना। तो जैसे मैं हमेशा अपील करती हूं कि लोग अपने घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें, गमले कूलर सब अपना साफ कर लें, हफ्ते में 1 या 2 दिन इस चीज को हमेशा करें, उससे बहुत सारा जो डेंगू का प्रकोप है वो कम हो जाता है।
देहरादून शहर में बारिश के दौरान हो रहे जलभराव की स्थिति से निपटने की बात पर जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन ने नालियों की लगातार साफ सफाई की जा रही है। नैनीताल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ ने आज 6 लीटर पॉलीपैक में स्टैंडर्ड फुल क्रीम दूध व आंचल शहद की लॉन्चिंग की। दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने कहा कि दुग्ध उत्पादकों को के हित में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दुग्ध के दामों में 12 रूपये तक की बढ़ोतरी कर दुग्ध उत्पादकों को लाभ दिलाया है। उन्होंने कहा कि 6 लीटर का पॉलीपैक बाजार में आने से दुग्ध उत्पादकों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में आज बादल छाए रहे, दोपहर के समय कुछ स्थानों पर धूप खिली रही, जबकि कहीं कहीं बूंदाबांदी की भी खबर है। राज्य में पिछले दिनों हुई बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय अंचल में अवरूद्ध मुख्य और संपर्क मार्गों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार रुद्रप्रयाग में 3, उत्तरकाशी में 1, बागेश्वर में लगभग 10, देहरादून में 3, पिथौरागढ़ में 4, चंपावत व चमोली में 10-10 मोटरमार्ग अवरूद्ध हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज 18 जुलाई तक राज्य के अधिकांश जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी को देखते हुए लोगों से अनावश्यक यात्रा करने के साथ ही सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही 4 धाम तीर्थयात्रियों से मौसम पूर्वानुमान देखकर ही यात्रा शुरू करने और अपने साथ आवश्यक दवाइयां, रेनकोट व गर्म कपड़े रखने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 3-4 वर्ष में 8 करोड़ रोजगार सृजित किए गए हैं, जिससे बेरोजगारी के बारे में दुष्प्रचार करने वालों को करारा जवाब मिला है। मुंबई में कल भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देश में कौशल विकास और रोजगार की आवश्यकता है और केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार स्थिरता और आर्थिक विकास को प्राथमिकता दे रही है और एनडीए के 3रे कार्यकाल का निवेशकों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया है। प्रदेश में निजी कोचिंग सेंटरों के संचालन के लिए राज्य सरकार नई नीति तैयार करेगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग व विद्यालय शिक्षा के अधिकारियों से सैद्धांतिक सहमति बन गई है। जल्द ही हितधारकों के साथ बैठक कर उनसे भी सुझाव लिए जाएंगे, ताकि छात्रों और कोचिंग संचालकों के हितों को सुरक्षित किया जा सके। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि नई नीति के तहत निजी कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण के लिए जिला स्तर पर पंजीकरण प्राधिकारी नामित किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी विवाद के समाधान के लिए जिला स्तर पर ही अपीलीय प्राधिकारी का भी गठन होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से अपनी सरकार पोर्टल की ई सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा सुचारू रूप से जारी। अब तक 30,50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए। राज्य सरकार ने आपदा के संबंध में भ्रामक और गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है और प्रदेश के अधिकांश जिलों में 8 जुलाई तक भारी बारिश व आकाशीय बिजली चमकने की चेतावनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।